ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने गीत सुना कि मेरी आत्मा चल परमात्मा से मिलन करने, और इसी का नाम है राजयोग। कि जब आत्मा का एक मधुर मिलन ईश्वर के साथ होने लगता है, परमात्मा को हम सभी याद करते हैं, परंतु मन में एक शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता है। और इसीलिए कई बार कई लोग भगवान से दूर हो जाते हैं कि मन तो लगता नहीं है, फिर क्यों टाइम वेस्ट करें। परंतु कोई भी साधना सफल तभी होती है जब तीन चीजें होती है। सर्वप्रथम साधक चाहिए, दूसरा साध्य चाहिए, और तीसरा साधन चाहिए। जब ये तीनों है तब साधना सफल होती है। साधक हम स्वयं है, साध्य परमात्मा है, और साधन है हमारा मन। मिलन कराने लिए मन अति उत्तम साधन है। इसीलिए प्रथम दो दिन में पहले आपको स्वयं का परिचय मिला, साधक का परिचय मिला, दूसरे दिन आपको साध्य का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, और आज उस साधन को कैसे प्रयोग में लाना है उसके विषय में हम जानेंगे। तो मनुष्य का मन अति तीव्र वेगी है, यहां बैठे बैठे भी पता नहीं कहां कहां चला जाता है। मन के लिए कोई बंधन नहीं है। यहां बैठे हैं, किसी व्यक्ति को याद करना है कि जो लंदन में हो, अमेरिका में, विद इन अ सेकंड मन हमारा चला जाएगा उसके पास। ये नहीं कि इतना किलोमीटर दूर है, कैसे उसको याद करें, नहीं, चला जाता। यहां बैठे बैठे कोई घटना को याद करनी है जो 20 साल पहले हुई थी, तो मन 20 साल पीछे भूतकाल में भी चला जाता है। ये नहीं कहते कि इतना समय बीत गया, मैं कैसे उसको याद करूं, नहीं, सेकंड के अंदर मन चला जाता। कोई प्लानिंग करनी हो भविष्य के लिए तो मन 5 साल आगे भी चला जाता है। तो मन के लिए कोई बंधन नहीं है। समय या स्थान बंधन नहीं बन सकता है या मन को बांध नहीं सकता है। जब मन के पास इतनी शक्ति और क्षमता है तो राजयोग में उसी मन को हम ले चलते हैं एक यात्रा पर, और ये यात्रा मन की यात्रा है ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए। एक आध्यात्मिक यात्रा है। भक्ति में यात्राओं का बहुत महत्व है, लोग कितने दूर दूर तक पैदल भी जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, लेकिन राजयोग में ये यात्रा मन से हम करते हैं ईश्वर के पास जाने के लिए। वहां तन से वो यात्रा करते हैं ईश्वर के धाम तक जाने के लिए, लेकिन यहां मन से हम यात्रा करते हैं। इस यात्रा के तीन कदम है। पहला कदम है जिसको हम कहते हैं ये अंतर की यात्रा है, भीतर की यात्रा है, जहां हम मन को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। कोई भी उड़ान भरने से पहले एक एयरपोर्ट होता है या रनवे होता है जहां से वो टेक ऑफ करता है। गाड़ी के लिए भी प्लेटफॉर्म होता है जहां से वो आगे चलती है। इस आध्यात्मिक यात्रा की उड़ान भरने के लिए भी सर्वप्रथम साधक को अपनी वास्तविकता में स्थित होना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आत्मभावस्थ, तू आत्मभाव में स्थित हो जा। आत्मभाव में स्थित होने का मतलब क्या है? क्या ये जपना है कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं? नहीं, जपने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब छुट्टी पर है, घर में है, तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में वो अपने आप को घर का सदस्य समझता है। और घर का सदस्य समझता है तो घर के कारोबार में हाथ भी बटाएगा, बच्चों के साथ समय बिताएगा, गार्डनिंग का शौक है तो बगीचे में चला जाएगा, कुछ गार्डनिंग भी कर लेगा, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन मंडे मॉर्निंग होता है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तैयार होने लगता है कि अपने आप को डॉक्टर समझता है, रखता नहीं है, मैं डॉक्टर हूं मैं डॉक्टर हूं मैं डॉक्टर हूं, नहीं। लेकिन जैसे ही उस भाव में आ गया कि मैं डॉक्टर हूं, कि कौन याद आता है? पेशेंट्स याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएगी, दवाइयां याद आएगी, ऑपरेशन याद आएंगे, ट्रीटमेंट याद आएंगी, यही सब बातें याद आने लगती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी चाल बदल जाती है। कोई अगर गुड मॉर्निंग करता है तो भी गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ता है, खड़ा नहीं हो जाता है फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उसको अपने टाइम की वैल्यू है कि मैं डॉक्टर हूं। तब कहेंगे इसने डॉक्टर समझा है अपने आप। पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर जब जाता है, उसको अंदर में मालूम है कि कल ही इसका ऑपरेशन किया है, रात में उसको दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। जाकर जब पूछता है, पेशेंट कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि डॉक्टर साहब, रात भर नींद नहीं आई, ऐसा हुआ, ये हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। डॉक्टर साहब कहेंगे, अच्छा, ये गोली लिया था कि नहीं लिया? हाँ डॉक्टर साहब, ये गोली भी लिया था तो भी नींद नहीं आई। डॉक्टर साहब को अंदर मालूम है कि दूसरे दिन तो दो दिन हो जाएंगे तो अपने आप दर्द कम होने लगेगा, सेटल होने लगेगा। कहेंगे, कोई बात नहीं, आज आपकी गोली बदली कर देते हैं, रखेंगे वही गोली, बदली कर देते, साइकोलॉजिकली उसको कह दिया बदली कर दिया, नर्स को कहेंगे और दूसरी गोली लगा देना, है वही गोली। दूसरे दिन पूछेंगे पेशेंट के, हाँ डॉक्टर साहब कल वाली गोली जो थी ना बड़ी अच्छी थी, नींद अच्छी आई, है ना। इसीलिए डॉक्टर भी अंदर मुस्कुराता है कि गोली तो वही थी, लेकिन एक साइकोलॉजिकली उसको ट्रीटमेंट दिया। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि डॉक्टर समझता है तो उसको पेशेंट के साथ भी रिलेट करना आता है। ओपीडी में जब बैठता है पेशेंट देखने के लिए, और मान लो कि उस समय कोई रिश्तेदार आ जाए, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सभी कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सब ठीक है बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ है। मना कम टू दी पॉइंट, ये ओपीडी कोई रिश्तेदारों की खबर हालचाल लेने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने डॉक्टर समझा है, इसीलिए उस समय वो अपने आप को रिश्तेदार नहीं समझता है। इसीलिए इसी प्रकार जब एक व्यक्ति टीचर है और अपने आप को टीचर समझता है तो कौन याद आता है, स्कूल के बच्चे याद आएंगे, ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास को ये एक्टिविटी करानी है, ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, ये क्लास का एग्जाम लेना है, उसी से कनेक्टेड सारी बातें याद आने लगेगी। उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आते, क्योंकि उसने टीचर समझा है। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आता है, पत्नी की याद आती है। जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आता है, बच्चों की याद आती है। जब खुद को बच्चा समझता है तो माता पिता की याद आती है, खुद को भाई समझता है तो भाई बहन की याद आती है, तो अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आए। सिंपल, तो जब उस कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को स्थित कर देते हैं कि मैं एक शुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा हूं, तो उसको परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आने लगेगी और मन उस उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसलिए कहा यह रटना नहीं है कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, आत्म समझना माना उस भाव में अपने आप को स्थित कर देना कि मैं आत्मा हूं। उसके बाद दूसरा कदम इस यात्रा का है जिसको हम कहते हैं परमधाम की यात्रा है, कि जब मन को हम ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में, उस साध्य के पास, और वहां जाकर ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं कि हे प्रभु मुझे शांति दो, शक्ति दो, ये दो वो दो, नहीं। जिस तरह बाहर धूप में खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी। समुद्र के पास खड़े रह करके समुद्र से मांगते नहीं है ये समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, जैसे ही आप उसके कनेक्शन में आए कि अपने आप वो ऊर्जा, शीतलता की ऊर्जा, गर्माइश की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। ठीक इसी तरह जब हम मन को ईश्वर के सानिध्य में ले जाते हैं तो परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने मन को एकाग्र करते उस दिव्य स्वरूप में तो वो ऊर्जा अपने आप मिलने लगती है, आने लगती है और आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कैसे पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कल्पना कर रहे बैटरी चार्ज हो रही होता कुछ नहीं। व्हाट इज द प्रूफ कि बैटरी चार्ज हो रही है? आज की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, उसको यूज करो तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में लगाना पड़ता है, चार्ज हो जाता है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? तो सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जब आप यूज करते हैं तो वो सारे केमिकल कंपोनेंट अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जब संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब उसको चार्जर में रखते हैं तो अपने आप चार्ज नहीं होता है, उसको एक स्रोत के साथ जोड़ना पड़ता है, और जब करंट आती है तो करंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से, उस शक्ति से, उस ऊर्जा से वो सारे केमिकल कंपोनेंट रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं, और जब संपूर्ण सुव्यवस्थित हो जाते माना बैटरी चार्ज हो गई। ठीक इसी तरह आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, उसका प्रमाण क्या? तो हमारी भीतर की सिस्टम भी सारी अस्त व्यस्त है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, टेंशन हो जाता है, किसी ने कुछ कहा फील हो गया, मूड ऑफ हो गया, मूड अपसेट हो गया, तो हमारी सारी सिस्टम भी अस्त व्यस्त है, इसीलिए ये कमजोरियां आ जाती है। लोग कहने में भी यही कहते, मेरे में एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा ये कमजोरी है, किसकी कमजोरी है? शरीर की या आत्मा की? आत्मा की कमजोरी है, और जब यह आत्मा की कमजोरी है तो इस कमजोरी को वापस भरना, इसी को कहा जाता है बैटरी चार्ज करना, और उसके लिए मन ये साधन है। मन ही सारे सिस्टम को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है विचारों से, इसीलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। नेगेटिव चिंतन करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। तो मेडिटेशन ये चार्जर है, लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से चार्ज नहीं होता है, हमें भी उस स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है, और जब मन को जोड़ते हैं उस स्रोत के साथ तो जो करंट आती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस करंट से बैटरी चार्ज होने लगती है, आत्मा सशक्त होने लगती है, जिसका प्रमाण खुद को भी महसूस होता है और हमारे आसपास वालों को भी महसूस होता है। वो भी कहते हैं कि जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया है इसमें काफी परिवर्तन आया है, पहले नहीं तो बात बात में गुस्सा आता था, अभी शांत हो गया है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। तो ये शक्ति जो आई कहां से आई? बैटरी चार्ज हुई तभी तो आई। इस तरह से जो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, खुद को भी महसूस होता है, हमारे आसपास वालों को भी महसूस होता है, यही प्रमाण है बैटरी चार्ज हो रही है। ये दूसरा कदम है, लेकिन इस यात्रा का तीसरा कदम है कि इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, कि जब हम अपनी बैटरी चार्ज करते जाते हैं तो वो वाइब्रेशन, वो प्रकंपन, वो प्रवाह हमारे चारों ओर फैलने लगता है। यहां आए हैं आप, और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा, कौन सा? ओम शांति। सीखा ओम शांति? सीखा ओम शांति क्या है? ओम शांति कोई हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है, लेकिन ओम शांति का मतलब है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, और ये शांति का प्रवाह जितनी हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये प्रवाह पूरे वातावरण के अंदर फैलने लगता है, जिससे वातावरण भी चार्ज हो जाता है। इसीलिए आप महसूस किया होगा शांति बनाए, कहते कितनी शांति है, 5,000-6,000 लोग हैं, घर में एक शादी और 500 लोग आ जाए तो कितना कोलाहल हो जाता है, लेकिन यहां आने के बाद ये शांति का प्रवाह महसूस किया और आप भी उस प्रवाह में ढलते गए, और हर कारोबार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सुव्यवस्थित, क्योंकि शांति है। खाना बन रहा है, कहां बन रहा है, इतने लोग खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कोई हंगामा नहीं, कोई हलचल नहीं, सहजता से। हाँ, यहां से अगर आप बाहर बाजार भी चले जाएंगे तो कोलाहल महसूस होगा, क्योंकि वो वातावरण इतना चार्ज नहीं है। यहां से स्टेशन जाएंगे तो और ज्यादा कोलाहल मिलेगा, क्योंकि वो वातावरण चार्ज नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस आप खुद महसूस करेंगे कि वो प्रवाह सारे वातावरण के अंदर भी फैलता है। ठीक इसी तरह जब मेडिटेशन करते हैं, बैटरी चार्ज होती है और वो प्रवाह फैलने लगता है, तो आपका घर का वातावरण को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, हमारे घर को ऐसा बनाएं हम कैसे कर सकते हैं? हम यही कहते हैं, आपकी बैटरी चार्ज करो, सब ठीक हो जाएगा। कई पूछते हैं, बच्चों को कैसे परिवर्तन? हम यही कहते हैं, आप अपनी बैटरी चार्ज करो, बच्चों में भी वो प्रवाह आने लगेगा, है ना? खुद की बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। इसीलिए यहां का स्लोगन है, व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। जब मैं खुद परिवर्तन हो जाती हूँ, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो मेरी दुनिया ही पूरी परिवर्तन हो जाएगी, मेरे संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा, हर लेवल पर परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा, ये मेडिटेशन करने की आवश्यकता क्या है आज के युग में, क्यों करना चाहिए? क्योंकि सारा दिन एक व्यक्ति को वही काम पर जाना पड़ता है बाहर की दुनिया में, जहां बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, और उस नेगेटिव वातावरण में आपको जाना पड़ता है, चाहे मार्केट जाना है, चाहे कार्य क्षेत्र पर जाना हो, जो काम करते तो कार्य क्षेत्र पर जाना हो, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। और अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं है तो जैसे ही उस वातावरण में जाते हैं, उनकी हरकतें हमारी बैटरी को और भी डिस्चार्ज कर देते हैं, उनकी हरकतों को देख करके गुस्सा आ जाता है। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं कि कोई झूठ बोलता है ना, मेरे से सहन नहीं होता है। अब सोचने की बात यह है कि उसने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला सामने वाले ने झूठ क्यों बोला? डर, डर से झूठ बोलता है, सच्चाई को फेस नहीं करने का डर। या आपको फेस करने का करने की ताकत नहीं है उसके अंदर, इसीलिए वो झूठ बोलता है या झूठ का सहारा लेता है। तो वो तो कमजोर है ही, जब फेस नहीं कर सकता है आपको या सच्चाई को तो झूठ का सहारा लेता है, तो वो तो कमजोर है, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन जैसे कहा कि उसको डर है, डर के कारण झूठ, तो डर पॉजिटिव क्वालिटी है या नेगेटिव है? कौन सी क्वालिटी है? नेगेटिव है। तो वो खुद नेगेटिव के परवश है और परवश होने कारण उसने झूठ बोला। लेकिन आप उसके संग में आते हैं और उसने झूठ बोलते ही आपको गुस्सा आ गया, तो आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? यानी वो सामने वाला जो खुद नेगेटिव के परवश है, उसने आपको भी कितना जल्दी परवश कर दिया कि उसके प्रभाव में आते ही आपकी बैटरी भी एकदम डिस्चार्ज होकर के आप गुस्सा करने लग जाते हैं। तो पावरफुल कौन हुआ, आप हुए या वो हुए? कौन हुआ? वो हुए ना, जिसने बहुत जल्दी आपकी शांति खत्म कर दी। आप बैटरी चार्ज करके आए लेकिन शांति खत्म हो गई, और आपको भी गुस्सा दिला दिया उसने, और उस गुस्से में आकर के नुकसान कहीं हो जाते कि उस गुस्से में आकर के आप गुस्से में है और आपको कोई बात का डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा? गलत हो जाएगा। फिर अफसोस करना पड़ता है सारी जिंदगी, अरे ये बात मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उस समय मुझे गुस्सा आ गया था। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेडिटेशन करने से जब हम अपने बैटरी को चार्ज करते हैं और ये प्रवाह हमारे चारों ओर फैलता है, तो ये प्रवाह हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच बन जाता है, एक कवच है, शील्ड है, जो हमारी मनस्थिति को सुरक्षित रखता है। आप जाएंगे उस वातावरण के अंदर, उस कार्य क्षेत्र पर, सामने वाला कमजोर है, वो जानता है उसने कोई गलती की है, उस समय आप जब उसको पूछते हैं तो हो सकता है वो झूठ बोले, लेकिन आप उसकी बात को जानते हुए भी उसको शायद सही गाइडेंस दे सको शांति से, या फिर वो झूठ न बोल करके उस समय सच भी नहीं बोलता है, मौन रहेगा, चुप रहेगा। आपका प्रवाह उसको प्रभावित करता है और वो झूठ बोलने के बजाय चुप रहता है, शांत रहता है, सच भी नहीं बोलता है। ताकत नहीं है, सच बोलने की बहुत शक्ति चाहिए, तो ताकत नहीं इसलिए सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ये आपका प्रभाव उसके ऊपर है, नहीं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ये आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, फिर आप जानते हैं और आप जाकर के अपना कार्य शुरू कर देते हैं। आधा एक घंटे तक उसके अंदर चलता रहता है, तो मुझे सच बता देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। आपका प्रवाह ऐसा होता है कि आधा घंटे के बाद वो आकर आपसे कहता है सॉरी, बात ऐसी थी, सच बोल देता है। यानी आपकी ऊर्जा से उसको हिम्मत मिली सच बोलने की, और वो आकर के आधा घंटे के बाद आपको सच बताता है, और उस समय आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। तो आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई? इसीलिए मेडिटेशन करने से ये नहीं कि परिस्थिति नहीं आएंगी, मेडिटेशन करने का ये भाव नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, आएंगे परिस्थिति आएंगी, लेकिन बैटरी चार्ज होंगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट, उसको अच्छी तरह से आप हैंडल कर सकेंगे। ये आवश्यकता है वर्तमान समय में, इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत है। तभी आज दुनिया के अंदर भी मेडिटेशन का एक क्रेज चला है कि हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, क्योंकि उससे पॉजिटिव फायदे बहुत है और ये साइंटिफिकली टेस्टेड है, इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन। पहले के जमाने में जब टेलीफोन नहीं था, जब मना आज की तरह मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन थे, टेलीफोन से पहले टेलीग्राम था और टेलीग्राम से पहले था टेलीपैथिक कनेक्शन। टेलीपैथिक कनेक्शन माना क्या? क्या आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं और थोड़ी देर में उसका फोन आ जाता है तो क्या कहेंगे? अरे अभी आपको ही याद कर रहे थे। और कितनी खुशी होती है कि हमने उसको याद किया और देखो तुरंत उसका फोन आ गया, कैसी टेलीपैथी है, कहते हैं ना। लेकिन ये टेलीपैथी माना क्या कि जब वो दोनों व्यक्ति की मानसिक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसको कहते हैं टेलीपैथी, कि दोनों व्यक्ति एक ही स्तर पर उनकी मानसिक फ्रीक्वेंसी चलती है और जब दोनों की एक ही लेवल पर फ्रीक्वेंसी चलती है तो आपने उसको याद किया और उसने सामने से प्रत्युत्तर दिया। ये है टेलीपैथिक कनेक्शन। अगर इंसानों के साथ हमारी ये टेलीपैथी होती है, हर एक के साथ नहीं होती, किसी किसी के साथ होती है, अगर इंसान के साथ अगर ये हो सकती है तो क्या ईश्वर के साथ नहीं हो सकती है? वो भी हो सकती है। और जैसे व्यक्ति को याद करने से इतनी खुशी महसूस होती है कि हमने उसको याद किया और देखो तुरंत उसका फोन आ गया ना, कैसी टेलीपैथी, आप महसूस करेंगे कि आप ईश्वर को याद करो और उसका प्रवाह या उसका रिस्पांस प्रत्युत्तर आपको मिलने लगे तो कैसी खुशी होगी। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि सुबह में कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो जो आप किसी को कह नहीं सकते हैं और मन ही मन आप ईश्वर के सामने वो बात रखते हैं और दिन के अंत तक वो कार्य सुलझ जाता है और ऐसा सुलझ जाता जो आपने सोचा तक नहीं होता है और उस समय इतनी खुशी होती है, कैसा लगता है भगवान मेरे मन की हर बात सुन रहा है। ये कैसी टेलीपैथी ईश्वर के साथ कि हमने सिर्फ उसी के सामने ये बात रखी और वो बात साकार हो गई। कैसे हुई? ये टेलीपैथी है। लेकिन ये टेलीपैथी तब हो सकती है क्योंकि ईश्वर का स्तर यहाँ है, बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस में है और हमारा स्तर यहाँ है ग्रॉस लेवल पर। अब ये टेलीपैथिक कनेक्शन का अनुभव करने के लिए या तो उसको मेरे लेवल तक आना पड़े तब कनेक्शन हो, या तो फिर मुझे अपनी मानसिकता को ऊपर उठाना होगा तब कनेक्शन हो, है ना। अब वो मेरे लेवल तक आए ये संभव नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपनी मानसिकता को ऊपर उठाना होगा और उसके लिए कहा कि अपने को आत्मभाव में स्थित करो, क्योंकि जब हम आत्मभाव में स्थित होते हैं तब हमारी मानसिकता कॉन्शियसनेस اتنی اوپر ہونے اٹھنے لگتی ہے اور تب جا کر کے ہمارا ٹیوننگ اس ایشور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے ایک بار نہیں لیکن کئی بار اگر آپ کو انوبھو ہونے لگے تو پھر تو کہنا ہی کیا. لیکن یہ ٹیلی پیتھک کنیکشن کرنے کے لیے بھی کچھ آدھار چاہیے. جس طرح ویکتی کو یاد کرتے ہیں تو اس کا آدھار ہوتے ہیں. بنا آدھار کے آپ کسی کو یاد نہیں کرتے تو کس بیسس پر یاد کرتے؟ چار آدھار پر یاد کرتے ہیں ویکتیوں کو, انسانوں کو. سب سے پہلا آدھار ہے پریچے. راستے چلتے ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہر ایک کو تھوڑی یاد کرتے. جہاں جس کے ساتھ پریچے ہوتا ہے اسی کو یاد کرتے ہیں. دوسرا آدھار ہے سمبند. جہاں جس کے ساتھ ہمارا سمبند ہے اس سمبند کے آدھار پر یاد کرتے. تیسرا آدھار ہے سنیہ, پیار. سنیہیوں کو یاد کرتے ہیں. اور چوتھا آدھار ہے پراپتی. جہاں سے کچھ ملنے والا ہے اس پراپتی کے آدھار پر یاد کرتے. تو منوشیہ کو یاد کرنے کے یہ چار آدھار ہیں. اور یہ چار آدھار پر چار پرکار کی یادیں. جہاں صرف پریچے ہے وہاں یاد کیسی ہوتی ہے؟ آج مان لو کہ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے اور ہمیں ہر پریچت ویکتی کو بلانا ہے تو کیا کریں گے؟ ایک ایک کو یاد کرنے کی محنت کریں گے, لسٹ تیار کریں گے تاکہ کوئی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. تو جہاں صرف پریچے ہے وہاں یاد بھی کیسی ہے؟ محنت والی یاد ہے. لیکن جہاں سمبند ہے وہاں یاد کیسی ہے؟ جیسے ماں کا بچے کے ساتھ سمبند ہے. مانو بچہ کہیں ہاسٹل میں پڑھ رہا ہو اور وہاں سے خبر آ جائے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماں کو کیا ہوگا؟ بچے کی یاد ستائے گی. کھانا بنا رہی ہوں گی, یاد کس کی ہوں گی؟ بچے کی. وہ کیا کر رہا ہوگا, کیا کھا رہا ہوگا, کون دھیان رکھ رہا ہوگا, دوائی لیتا ہوگا نہیں لیتا, کتنے بھی چار آتے. مان لو کہ دوسرے دن اس کا فون آ جائے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے تو بھی ماں کا جو کنیکشن ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آواز سنتے کیا کہتی ہے؟ آواز ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. کبھی کبھی تو بچے کی یاد اتنی ستاتی ہے کہ رات کو نیند اڑ جاتی ہے, پوری رات نیند نہیں آتی ہے. آخر اس کو لگتا ہے میں جا کر کے اس کو دیکھ کر کے آتی ہوں تب جا کے اس کو شانتی ہوتی ہے. یہ ہے سمبند کے آدھار پر یاد, ستانے والی یاد, جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا دکھ ہے, دکھ کی فیلنگ ہے. لیکن جہاں سنیہ ہے, پیار ہے, وہاں یاد کیسی ہوتی ہے؟ آج مان لو کہ کنیا ہو یا کمار ہو, جب تک اس کو پتا نہیں کہ اس کا بھوشیہ ساتھی کون ہے تب تک من بھٹکتا ہے, کون ہوگا, کیا ہوگا, کیسا ہوگا, انیک وچار آتے. لیکن جس دن پریچے ہو جائے, سمبند جڑ جائے, اس کے بعد اس کو کہنا پڑتا ہے کہ اب تم اپنے بھوشیہ ساتھی کو پیار سے یاد کرو, کہنا پڑتا ہے. یا وہ کہے گی کہ پتہ نہیں میرا تو من ہی نہیں لگتا ہے, کہے گی ایسا؟ ایکانت کے پلوں میں بیٹھے ہوں گے اور من چلا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. پاس میں سے کوئی گزر جائے اور پوچھا جائے یہاں سے کوئی گیا تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, ارے اتنا بڑا ویکتی چلا گیا اور تمہیں آنکھیں کھلی ہیں دکھائی نہیں دیا, تو کیا کہتے؟ میرا دھیان نہیں تھا. तो ध्यान कहाँ था? ध्यान किसको कहते हैं? और ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए कि बंद चाहिए? बताओ, खुली चाहिए, है ना? तो जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद भी कैसी है? समाने वाली याद, होने वाली याद, जिस याद में भी खो जाते हैं, समा जाते हैं। और यहां अगर मैं कहूं कि खुली आंख कर रख करके मेडिटेशन करो, तो क्या कहते हैं? ध्यान नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? तो मन को दोषी ठहराते। मन बड़ा दुष्ट है ना, मन बड़ा पापी है ना, मन बड़ा खराब है, चंचल है, भटकता रहता है। अरे मन को क्यों दोष देते हैं? मन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। वही मन है जो व्यक्ति की याद में खो जाता है और ईश्वर की याद में दुष्ट हो गया, पापी हो गया। नहीं, मन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। कहाँ है प्रॉब्लम? कि शायद शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। और प्यार ही ना हो तो मन कहां से लगेगा? इसलिए मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता है। इसलिए आज के बाद जो कहते हैं ना, मन नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं होता है, समझ लेना प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहीं और है। इतना ईश्वर के प्रति प्यार विकसित करो, डेवलप करो, तो लोग क्या कहते हैं? प्यार किया थोड़ी जाता है, हो जाता है। तो ईश्वर के साथ भी जिस दिन आपको प्यार हो जाए ना, ध्यान ऐसा लग जाएगा कि आपकी शिकायत ही समाप्त के ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं। इसलिए मन को दोष नहीं दो, मन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो वहीं जाता है जहां प्यार होता है। तो ईश्वर से इतना गहरा प्यार होना चाहिए, और जिस दिन ईश्वर से प्यार हो जाए ना, फिर देखो मन मन कहीं और जाएगा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आज मनुष्य ने प्यार में इतने धोखे खाए हैं, तो अब ईश्वर के साथ तो प्यार हो ही जाएगा, है ना? हो ही जाएगा ना, कि नहीं होगा? होगा, होगा, पक्का? बहुत अच्छी बात है ना? फिर तो ध्यान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और चौथा है, जहां प्राप्ति है वहां याद कैसी होती है? आज एक बिजनेसमैन हो और उसको पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति शहर से आएगा, ये होटल में रुकने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ बिजनेस डील हो जाए तो माला माल हो जाएंगे, लेकिन उसका पहुंचने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बाय रोड निकला है तो देर से भी रात को पहुंच सकता है, तो वो व्यापारी को नींद आएगी? प्राप्ति का पता है, माला माल हो जाएंगे, तो नींद आएगी? बार बार फोन करता रहेगा, वो आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। आखिर उसको लगता है वही रिसेप्शन में जाकर के बैठ जाऊं ताकि पहली अपॉइंटमेंट मुझे ही मिले। सारी रात भी अगर उसको बैठना पड़े तो बैठेगा या सो जाएगा कि जाने दो, मेरे मुझे तो नींद आती है, सो जाता हूं? सो जाएगा नहीं। लेकिन यहां जब ईश्वर को याद करने के लिए कहते, तो कहते नींद आती है। हम मेडिटेशन में नींद आती है। अरे क्यों नींद आती है? क्योंकि प्राप्ति का पता नहीं कि क्या प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्ति का पता हो तो नींद आएगी? कभी नहीं आएगी। तो जहां प्राप्ति है, सिर्फ प्राप्ति है, स्नेह नहीं है, वहां याद कैसी होगी? स्वार्थ भरी याद, मतलब भरी याद। अब अगर अपने आप को देखे, ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है? मेहनत वाली है, करना पड़ता है, सताती है, समा जाते हैं, खो जाते हैं, या स्वार्थ भरी है, मतलब भरी है, कौन सी याद है? ईश्वर के साथ कौन सी याद है? होनी कौन सी चाहिए? होनी कौन सी चाहिए? समाने वाली है कौन सी? मतलब भरी, स्वार्थ भरी है ना? बिजनेस डील करते हम ईश्वर के साथ भी, मेरा इतना काम हो जाए प्रभु तो दो नारियल चढ़ा देंगे, है ना? यानी ये काम का भाव दो नारियल है, अगर कर दिया भगवान ने तो उसको दो नारियल मिल गए, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा, है ना? तो बिजनेस डील हो गई ना, प्राइस हम फिक्स करेंगे, बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया या 501 रुपया, 1001, तो प्राइस हम फिक्स करते हैं। तो ईश्वर की याद या तो स्वार्थ भरी है आज दुनिया में, मनुष्य की याद ईश्वर के साथ कैसी है? चार प्रकार की है। पहले प्रकार की है स्वार्थ भरी याद, मतलब भरी याद। दूसरे प्रकार की याद है भय से याद करना, डर से याद करना। आज किसी ने मन्नत मानी हो कि मुझे रोज 5 माला करनी है, और किसी दिन बहुत व्यस्त रहे, 5 माला करने का टाइम नहीं मिला, तो रात को जाग कर दूसरों को डिस्टर्ब करके भी 5 माला करनी। अरे भाई कल 10 कर लेना। तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना, श्राप दे देंगे। अरे भगवान श्राप क्यों देंगे? और ऐसे डर से क्यों याद करते हो? याद करो तो प्रेम से करो, डर से नहीं करो। आज आपने अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया हो और वो कर नहीं पाया, तो आप नाराज होकर के उसको श्राप दे देंगे, तो भगवान हमें श्राप क्यों देगा? और ऐसे डर से क्यों याद करना? या तो तीसरे प्रकार की याद है कौन सी? शिकायतों भरी याद, फरियाद। शिकायत करते रहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा तुमने लिखा, मेरा भाग्य लिखते समय तुम बिजी हो गया था क्या? जो मिला है उसका एहसान नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत जरूर है, है ना? शिकायत जरूर है। इसीलिए आज मनुष्य की जहां शिकायत वाली याद होती है तो कैसी होती है? वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति खूब भक्ति करता था, काफी समय उसका भक्ति में जाता था, सुबह से लेकर के दोपहर तक, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो पार्टनर संभालता था और पार्टनर सारा ध्यान रखता था, इसीलिए ये लेट जाता था, नहीं जाता था तो भी चलता था, अब वो इतना भक्ति में मगन रहता था। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा मांगो जो मांगना है। बंदे ने सोचा आज सब कुछ मांग लेता हूँ, जैसे वो कहानी है 7वें मंजिल पर पोता का पोता भी दूध पीता हुआ देखूं, आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया, बच्चों का सब कुछ मांग लेना है। तो वो अपने अंदर ही अंदर वो सारा सेंटेंस फिट करने का प्रयत्न कर रहा था, वाक्य रचना जोड़ रहा था, कि उतने में भगवान ने कहा कि लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जो कुछ भी मांगेगा ना, तेरे पार्टनर को डबल मिलेगा, क्योंकि उसने मेहनत की और उसने तुझे छुट्टी दी तब तुझे तू भक्ति कर सका, तो उसको भी शेयर तो मिलेगा ना, तो उसको डबल मिलेगा। अब व्यक्ति क्या मांगेगा, है ना? पार्टनर को डबल कैसे मिलेगा? भक्ति मैंने की, पार्टनर को डबल कैसे मिले? अरे उसने भी तो मेहनत किया ना, नहीं तो थोड़ी तुम इतनी भक्ति कर सकते। नहीं, पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। तो क्या मांगा? मेरी एक आंख फोड़ दो। ये है मनुष्य की नियत, ये है आज के मनुष्य की नियत। इसीलिए कहा शिकायतों भरी याद, यह चौथे प्रकार की याद है, अयथार्थ संबंध जोड़ करके याद कर। अयथार्थ क्या करता है, भगवान के मंदिर में जाएगा, हे प्रभु आप तो ऊंच हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, है ना, भगवान की खूब महिमा करेगा और फिर क्या कहेगा कि हे प्रभु मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा, पता नहीं क्या क्या कहता है अपने आप को। अब आप सोचो कि क्या भगवान ये सुनकर खुश हो जाएगा। आज आपका बच्चा आपके सामने आकर कहे कि मम्मी आप तो इतनी अच्छी हो, महान हो, बुद्धिमान हो, महिमा करना शुरू करे तो आप क्या कहेंगे, पॉलिश कर रहा है तो कुछ चाहिए होगा इसको, है ना, मस्का मारना शुरू कर दिया इसने। खुश होंगे महिमा सुन करके, बच्चे के मुख से महिमा सुन करके खुश होंगे। और फिर अगर आपका बच्चा कहे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे में कोई अकल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये सुन करके आप खुश होंगे या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बेटा तू सचमुच मेरा ही बेटा है क्या, डाउट आ रहा है मुझे, कहेंगे ना ऐसा। तो ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, महान, पूजनीय, और हम उसके बच्चे, अगर नीच, पापी, कामी, कपटी, गंदा, बंदा है तो ये सुन करके क्या भगवान को खुशी होगी, होगी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और मंदिर में तो जाकर के ये गा लिया कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, और बाहर निकले और किसी व्यक्ति ने कहा तू नीच है, पापी है, कामी है, कपटी है, फिर झगड़ा हो जाएगा। अरे अभी तू अपने मुंह से तो गा के आए, तो क्या कहता है, वो तो भगवान के सामने ना, तेरे सामने थोड़ी, तो भगवान के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और, मेरी वास्तविकता क्या है, जो मैं भगवान के सामने गा रही हूँ वो है, या जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ वो है, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। तो कहते भगवान के सामने तो नम्रता दिखानी चाहिए ना, अरे नम्रता दिखानी है तो इंसान के सामने दिखाओ, भगवान के सामने अधिकारी बन जाओ, भगवान के सामने अधिकारी बनो। इसलिए कहा अयथार्थ संबंध, कई बार कई लोग क्या संबंध जोड़ते, हे प्रभु मैं तो आपका आपकी चरणों की धूल हूँ, चरणों का दास हूँ। अरे दास क्यों बनते हो, कहते नम्रता के कारण। अरे दास नहीं बनो, बच्चे बनो। आज घर में एक नौकर है, दास है और बच्चा है, नौकर आएगा कहेगा मुझे 100 रुपया चाहिए, आप निकाल के दे देंगे, ये पूछेंगे क्यों चाहिए, अच्छा उसने जो कारण बताया वो काम 25 रुपये में हो जाता है, 100 रुपया ज्यादा ही मांग रहा है, तो क्या कहेंगे, 50 ले जा, वैसे तेरा काम 25 में ही हो जाएगा, मांगने से आधा मिल गया। और वहीं अगर बच्चा आया और उसने कहा मुझे 10 रुपया चाहिए, आप पूछेंगे भी नहीं शायद क्यों चाहिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते, लेकिन आपके पास 10 रुपया छुट्टा नहीं है, 100 की नोट है, तो क्या करेंगे, दे देंगे। ये है अंतर बच्चा और दास। तो भगवान के सामने भी अगर दास बनकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मांगने से आधा मिलेगा, और इसीलिए रहेंगे सदा उदास, उदास रहेंगे। इसलिए कहते हैं दास नहीं बनो, नहीं तो उदास रहना पड़ेगा। उदासी चाहते हैं जीवन में, नहीं चाहते। बच्चे बन जाओ, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख, मांगने से भीख भी नहीं मिलती आज, बिन मांगे मोती मिले। तो बच्चा बनने में जो सुख है, बच्चा बनने में जो आनंद है, वो और कोई संबंध में नहीं है। तो यथार्थ संबंध जोड़ो। कितने संबंध जोड़ सकते हैं ईश्वर के साथ? तो मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध है जो हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। और वो 6 संबंध कौन से हैं? तो पहला संबंध है माता पिता और बच्चे का संबंध, माता पिता और बच्चे का संबंध। दूसरा संबंध है टीचर और शिष्य का, विद्यार्थी का संबंध। तीसरा है गुरु और शिष्य का संबंध। चौथा है दोस्त का संबंध, खुदा को दोस्त बनाकर देखो। पांचवा है प्रियतम का संबंध जो मीराबाई ने जोड़ा, प्रियतम बन जाओ। और छठा है भगवान को बच्चा बना लो, फिर देखो कितना आनंद आता है। तो मनुष्य के अति निकट के ये 6 संबंध है और ईश्वर के साथ भी ये 6 संबंध जोड़ करके देखो कितनी निकटता आ जाएगी, अपनापन महसूस होगा। और जहां अपनापन है, संबंध जोड़ते ही स्नेह जागृत होने लगेगा। स्नेह तभी जागृत होता है जब संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ये 6 संबंध अति निकट के हैं। माता पिता और बच्चे का संबंध कहो, टीचर और स्टूडेंट का संबंध कहो, या गुरु और शिष्य का संबंध। ये 3 संबंध ऐसे हैं जिसका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं, जितना भी करो कम ही है। और उसमें जैसे महसूस होता है कि उसकी छत्र छाया में है, सुरक्षित है। वो एक कहानी याद आती है, शायद आपने सुनी होगी, कि एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है कि जैसे समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है। ध्यान से देखता है तो कहीं कहीं 4 पैरों के निशान दिखाई दिए, कहीं कहीं 2 पैरों के निशान दिखाई दिए। और ध्यान से देखता है तो जब उसके जीवन के सुख भरे दिन थे, खुशी भरे दिन थे, उत्साह भरे दिन थे, तब 4 निशान दिखाई दिए। और जब उसके जीवन के दुख भरे दिन, कष्टों भरे दिन थे, तो सिर्फ 2 निशान दिखाई दिए। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैंने तो समझा था तू हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन आज क्या देखता हूँ, मेरे सुख भरे दिन में तो तुम साथ साथ चलते रहे, लेकिन मेरे दुख भरे दिन में, कष्टों भरे दिन में मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए थे। भगवान मुस्कुराकर कहता है कि नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ ही था, तेरे सुख भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़कर चल रहा था, इसलिए तुझे 4 निशान दिखाई दिए, लेकिन तेरे दुख भरे दिन में, कष्टों भरे दिन में तेरा कष्ट मुझसे भी देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, मैं तुझे चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था। ये 2 निशान जो दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं है, मेरे है। ये है ईश्वर का प्यार। कभी महसूस करके देखो और अपनी जीवन यात्रा में पीछे मुड़कर देखो कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आया, दुख आया, तकलीफ आई, उस समय जो सहन करने की शक्ति, जो उसको पार करने की शक्ति अदृश्य रूप में कहां से प्राप्त हो रही थी। लोग आएंगे, सहानुभूति के शब्द कह के चले जाएंगे, लेकिन जो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो अदृश्य रूप में ईश्वर ही दे रहा था। जो बाद में कई बार आप महसूस करके कहते भी है, कैसा महसूस हुआ कि उस समय जैसे कोई अदृश्य शक्ति मिल रही है, तब इतनी बड़ी घटना को पार करना आसान हुआ, नहीं तो आसान नहीं था, सहन करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो कैसे पार किया? तो अदृश्य शक्ति से। लेकिन कभी उस परमात्मा को कभी पीछे मुड़कर कहा, थैंक्स भगवान, शुक्रिया प्रभु, कभी किया? नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर मदद करता है तो कितना थैंक्स मानते हैं, आपके बिना ये संभव ही नहीं था। अरे प्रभु इतना अदृश्य रूप में शक्ति दे रहे हैं, उसका कभी हमने शुक्रिया अदा नहीं किया। इसलिए कहा कि जहां एहसान ही नहीं अंदर में, तो प्यार कहां से आएगा, है ना। तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। कल आपको डॉक्टर सतीश गुप्ता भी बता रहे थे कि प्रार्थना माना वन वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू गॉड। जो मंदिर गए, हाथ जोड़े, मुझे जो बोलना है बोल दिया और फिर सर झुका के बाहर निकल आए। सुनते नहीं है कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है, टाइम नहीं है या सुनने की शक्ति नहीं है। यहां तो दाद देनी पड़ेगी आपकी, इतना घंटा बैठकर आप सारा दिन सुनते हो, बहुत सुनने की शक्ति है ना। लेकिन शायद ईश्वर जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए सुनने की शक्ति नहीं है। या हम सुनना नहीं चाहते हैं कि वो मुझे क्या कह रहा है। तो मेडिटेशन माना टू वे कम्युनिकेशन, कुछ हम बोले फिर मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। शांति में ईश्वर का आवाज सुनाई देता है, इसलिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो मन को शांत करते हैं ताकि उसका आवाज भी हमें सुनाई दे कि वो मुझे क्या कह रहा है। वो एक बात याद आती है कि एक बार एक ग्वाल बाल था, गैया चराने वाला, सारी गायों को ले जाता था जंगल में, एक खुला मैदान आता था छोड़ देता था, अकेला होता था सारा दिन, क्या करता, रोज भगवान से कोई ना कोई बातें करता रहता था। एक दिन उसने जब जंगल में जाकर गायों को छोड़ दिया, एक झाड़ के नीचे बैठा और गायों को देख रहा था, तो उसके मन में आया जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, हर एक अपना अपना घास खा रही है, अब मैं शांति से इस झाड़ के नीचे बैठा हूँ। ऐसे ईश्वर ने भी हमें संसार में छोड़ दिया, हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला है, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, मुझे तो पता नहीं है तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा लड़का बड़बड़ा रहा है, पूछा, ए लड़का किससे बात कर रहा है। लड़के ने कहा, किसी, अरे तू बड़बड़ा रहा। लड़के ने कहा, भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अच्छा क्या बातें कर रहा था। जब लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त किए कि बस उसको कह रहा था तो थोड़ी देर के लिए आ जा, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, गपशप करेंगे, पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान कौन है तू जानता है, और ये कोई सभ्यता है भगवान से बात करने की। लड़के ने कहा, पंडित जी मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूँ, कपाप लगेगा ऐसी बातें करेगा तो। तो लड़के ने कहा, फिर पंडित जी आप मुझे सिखाओ ना कि कैसे बातें करनी चाहिए ईश्वर के साथ। पंडित जी ने कहा, बैठो सिखाता हूं। बिठाया और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना शुरू किया। अब वो अनपढ़ लड़का, उसको संस्कृत क्या मालूम, श्लोक पक्का कराते गए। दो घंटा लगा पूरा श्लोक रटने में। पंडित जी ने इतनी धैर्यता रखी, दो घंटे में श्लोक रटा दिया। फिर वहां से चले मंदिर जाकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे से ही बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो ठीक नहीं किया क्यों? तो आकाशवाणी में कहा भगवान ने, वो बच्चा रोज जंगल आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, मैं रोज उसका इंतजार करता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से जो तू उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलेगा जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, ना उस भाव से बोलेगा, और ऐसी रटी रटाई बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। वो दिल से बातें करता था, अब रटी रटाई बातें करेगा। भगवान को कौन प्यारा लगता है जो दिल से बातें करता है। कहीं हम भी वही रटी रटाई प्रार्थना रोज तो नहीं बोल रहे? अगर वही रटी रटाई प्रार्थना बोल रहे हैं तो उसको सुनने में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेडिटेशन माना दिल से बातें करो, दिल का कनेक्शन जोड़ना है, यही मेडिटेशन है, यही कनेक्शन जोड़ने की बात है। योग उसी का नाम है। तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि विचार शून्य नहीं होना चाहिए मेडिटेशन में? नहीं, विचार शून्य नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार करो, बहुत सुंदर विचार करो, ये मेडिटेशन है। तब कई लोग पूछते हैं कि प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि कोई मंत्र जाप नहीं है मेडिटेशन में? हम मंत्र जाप करते रहे, कोई नाम मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, मंत्र और मेडिटेशन में क्या अंतर है? मंत्र यानी मान लो कि किसी ने नाम दिया या मंत्र दिया आपको, ओम नमः शिवाय जपो, ये राम का नाम दिया है ना, और आप मंत्र जाप कर रहे। मंत्र माना क्या? मन को त्राण देने वाला शब्द। मन जो बहुत भटकता है तो उसको भटकने से बचाने के लिए उसको बिजी करो मंत्र जाप में, नाम के जाप में। और जाप करने में जब बिजी हो जाता तो मन भटकना कम करता था, ये पहले के अनुभव है। लेकिन आज जब मनुष्य का मन इतना हाइपर है तो मंत्र कितना उपयोगी सिद्ध होता है? नहीं होता है। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। रोज एक ही प्रकार की सब्जी रोटी बनाई जाए कितना दिन खाएंगे? दो चार आठ दस दिन पंद्रह दिन, उसके बाद पूछेंगे और कुछ मिलेगा या यही है? मान लो कि बनाने वाले ने बता दिया आपको कि अब जिंदगी भर यही है, क्योंकि ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने और कुछ सीखा नहीं, यही सीख लिया, अब जिंदगी भर आपको यही मिलेगा तीनों टाइम। अब तीनों टाइम यही कैसे खाएंगे? और उसने एडमिट कर लिया कि उसको और कुछ आता नहीं है तो क्या करेंगे? बहस करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो दूसरे दिन से बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी कोई होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी में पार्टी में खा के आ गए, घर में आके क्या कहेंगे? हमें भूख नहीं। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, वो कितना दिन खाएगा? उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है। आखिर वो बाजार में जाकर रेसिपी बुक ला करके उसमें से देख देख करके एक एक चीज बनाना शुरू करता है, और शाम को जब आप घर आते हैं आपको परोसता है, खाने के बाद क्या कहेंगे? खाने के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो बाजार जैसा नहीं बना, बाजार का थोड़ा ज्यादा टेस्टी लगता है, ये इतना टेस्टी नहीं। अरे जैसे किताब में लिखा था वैसे ही तो सब कुछ डाला, नहीं कुछ तो कम है। अब बाजार में एक्स्ट्रा क्या है? यही एक्स्ट्रा है जो घर के भोजन में नहीं है, है ना? उसी की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन बाजार में खाने की आदत जब पड़ जाती है तो वो टेस्ट जीवा पर चढ़ जाता है, तो घर का भोजन इतना स्वच्छता से बनाया हुआ वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाजार का अच्छा नहीं लगता था। ठीक इसी तरह मन का भोजन है चिंतन। अब रोज मन को भी एक ही प्रकार का चिंतन दे दिया, ओम नमः शिवाय जपो, थोड़ा दिन तो जप लेता है मन, महीना दो महीना जप लेता है, फिर दो महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है कि हे आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है। अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र जिंदगी भर जब टाइम मिले यही जपना है। अब मन ने भी समझ लिया कि सारी जिंदगी तो नहीं जपा जाएगा, ये नहीं खाया जाएगा, भाएगा नहीं। मन ने क्या किया, मन ने मुख से कहा हे मुख तू बोलता जा, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। इसलिए मुख बोलता जाता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हाथ में माला भी घूम रही होंगी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मन देखो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया क्या हो रहा है, वो बिल्ली आई दूध उबल रहा है। अब ऐसा मंत्र जाप करने से कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए मेडिटेशन माना माइंड, मन जो है क्रिएटिव है, रचनात्मक है, उसको हर वक्त अच्छे विचार चाहिए। अभी पिछले 1.5 घंटे से आप सुन रहे हैं, मन बाहर गया गया, कईयों का गया होगा कि आज घूमने जाना है जल्दी नाश्ता करो, है ना, कईयों का गया होगा। लेकिन जो आनंद ले रहे हैं उसका मन नहीं गया, कितना समय बीत गया पता नहीं, आनंद में है, हर एक बात अच्छी लग रही है, सुनते जाए ये मन करता है ना। तो समझो अपने मन को, मन को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। मन को आध्यात्मिक विचार अच्छे लगे, ये आध्यात्मिक विचार ही तो दे रहे थे, मन को आध्यात्मिक विचार अच्छे लगे, है ना। आज अगर मैं यहां बैठकर फालतू बातें करती थी, किसी की निंदा ग्लानी पॉलिटिक्स की बातें, इधर की बातें उधर की बात, तो शायद आप कहेंगे फालतू बातें कर रहे, चलो उठो, उठ जाते थे, बैठते नहीं थे, यहां 1.5 घंटा नहीं बैठते थे। समझो अपने मन को कि मन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। मन को कभी भी फालतू बातें पसंद नहीं है, निंदा ग्लानी की बातें पसंद नहीं है, पर चिंतन की बातें पसंद नहीं है, मन को आध्यात्मिक बातें ही पसंद आती है। लेकिन हम क्या देते हैं उसको, रोज फालतू बातें दे रहे हैं, टीवी के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा किसी से बातचीत, फालतू बातें दे रहे हैं। इसलिए मन इरिटेट होता रहता है, उसको पसंद नहीं, और वही बातें उसको परोसी जाती है तो क्या होगा, इरिटेट तो होगा ना। फिर कहते पता नहीं मन इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, मन इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। समझो ना अपने मन को, समझो कि मन को फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं, उसको आध्यात्मिक बातें कितनी पसंद आ रही है, कितना आनंद ले रहा है, समझो ना अपने मन को। और रोज इस पर थोड़ी थोड़ी उसको बातें देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो मन सदा प्रसन्न रहने लगेगा। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन बिना ज्ञान के ध्यान नहीं, ध्यान का आधार ज्ञान है। कई लोग कहते हैं हम रोज घर में मेडिटेशन करेंगे ना, पीस ऑफ माइंड देख लेंगे ना, पीस ऑफ माइंड देखने से ध्यान नहीं लगेगा, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। जैसे एक बच्चे को घर में हम ABCD सिखा सकते हैं ना, फिर भी स्कूल क्यों भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं कि स्कूल में एक माहौल मिलता है, बातें मिलती है, साधन मिलता है, संग मिलता है, तो सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। घर में आप पढ़ाने बैठेंगे, कोई फोन आया, कोई व्यक्ति आया, मिलने वाले आए, मेहमान आए, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो एकाग्रता बनती नहीं। तो घर में पीस ऑफ माइंड देखते हुए खाना भी बना रहे हैं, इधर उधर भी हो रहे हैं, 10 कामें भी, तो क्या एकाग्रता बनेगी क्या। इसीलिए इसको को कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय माना जहाँ संग मिलता है, बातें मिलती है, वैसा साधन मिलता है, हर तरीके की बातें आती है, तो सीखने की प्रक्रिया, एकाग्रता की प्रक्रिया जल्दी सहजता से हमारी लग जाती है। इसीलिए सेंटर पर जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है सेंटर पर तो ज्ञान से ही ध्यान लगता है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं लगता है, है ना? बाकी सारा दिन भले आप पीस ऑफ माइंड देखो, वो बात आपको मन को इधर उधर भटकने से बचाता है, लेकिन ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए माहौल जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है, उस अनुसार संग और बातें भी जरूरी है, तब हमारा ध्यान सहजता से लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। तो ये है मेडिटेशन, कि जहां हम मन को ईश्वर में बड़े प्यार से संबंध जोड़ करके दिल से बातें करते हुए लगाते हैं, तो मेडिटेशन इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है, तो चले थोड़ी देर, हा? आज आप लोगों को जाना है ये भी हम जानते हैं, इसीलिए एक गीत बजेगा, उस गीत के भाव में मन को ले चलेंगे और उसका आनंद लेंगे, उसी परमात्मा की स्मृति से आज घूमने भी जाएंगे तो थकावट कम लगेगी, ठीक है ना? इसलिए ध्यान करने के बाद ही उठना, नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या होगा, फिर सांसें फूलेगी, है ना? तो इसीलिए ध्यान करके जाते हैं तो सारा दिन भगवान शक्ति भी देता रहेगा चलने के लिए, क्योंकि ऊपर चढ़ाई होती है तो चलने में थोड़ा सांस फूलती है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, इसलिए सांस फूलती है। तो ईश्वर को याद करके, उसको साथी बना करके साथ चलो, तो शक्ति आपको अंदर में मिलती रहेगी।
Ah. प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है भगवान हमारा साथी है जैसे दीपक में